ध्यानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरतिसे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि बार साष्टांग दंडति प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवीगण और यहाँ के सज्जन महोदय माताएं और बहनें, हमने कल श्री रामचंद्र जी की कुछ कथाएं हमने सुनाई थी, आज उसी के कड़ी में फिर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी ने सुंदर की माला श्री रामचंद्र जी के गले में दी और फिर महाराज जनक ने अपने दूत भेजे और कहा कि सीता जी को, सीता जी ने, मेरी बेटी ने सुंदर में रामचंद्र जी को गले में जय माला डाल दी है, अब सुसाइट में आकर के वे विवाह करा करके कन्या दान ग्रहण करें। तत्पश्चात महाराज दशरथ अपने सब वशिष्ठ जी को भर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सबको लेकर के यहाँ आए। अभी तक्षिता जी के विवाह की बात थी, महाराज जनक ने कहा महाराज दशरथ सीता जी को तो राम के साथ में विवाह होगा ही, हमारी एक लड़की और है और हमारे भाई की दो लड़कियां, ये तीन लड़कियों की शादी भी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ में कर दी जाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता की बात है, वशिष्ठ जी से अनुमोदन लेकर के उन सबकी शादी हुई। अभी शादी होने के बाद में बारात जाने की थी, इतने में राजाओं ने कहा छीन लो सीता को, जो दुष्ट राजा था धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, इसे छीन लो। और सभी लेख हो हल्ला करने लगे, आक्रमण करने की तैयारी में हो गए और इसी समय में बड़े जोर से भयंकर आंधी आई, चारों तरफ से धूल उड़ने लगी, पेड़ भी उखड़ने लग गए और थोड़ी देर के बाद भी लोगों ने देखा ये आंधी और तूफान परशुराम जी के आने से हो रहा है। परशुराम जी वहां पर उपस्थित हुए, क्रोध से उनका मुख लाल हो रहा था, गौर वर्ण पर शंकर जी का भस्म लगाया हुआ त्रिकुंड धारण की हुई थी, नजर बड़ी टेढ़ी, क्रोध मानो उगल रहे हैं और हाथ में धनुष बाण और तीव्र फर्शा कंधे पर धारण किए हुए वहां पर उपस्थित हुए। ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा जो मानो वो जानते न हो। पूछा इतने राजा लोग क्यों उपस्थित हुए हैं? अरे ये शंकर जी का धनुष टूटा हुआ, ये कैसे टूट गया, कौन तोड़ दिया? राजा जनक बतलाओ, किसने इस धनुष को तोड़ा? दुष्ट ने, वो मेरा शत्रु है, उसको इन राजाओं से अलग कर दो, नहीं तो राजाओं के साथ में तुमको, तुम्हारे परिवार वर्ग को और दुष्ट को सबको मार डालूंगा, उसको अलग कर दो, जैसे उस शत्रु का विनाश में बताओ जल्दी से। महाराज दशरथ जनक जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। कैसे उत्तर दें, क्या उत्तर दें? और जनकपुर की स्त्रियां नर नारी, कहां से ये तूफान आ गया, ये विपत्ति कहां से कैसे आ गई? बड़े संयोग से बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, अब विवाह देखना था और इधर में यह ऐसी गड़बड़ी कर दी। और राजा लोग वहां पर जितने उपस्थित थे, जो अब तक काना खुशी और हो हल्ला कर रहे थे ये सीता जी को छीन लिया जाए, डर के मारे चुपचाप बैठ गए, क्योंकि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय को संहार कर दिया था पृथ्वी, जो घर में रहे थे वही उनको देखते ही सभी लोग थर्रा गए और चुपचाप बैठ गए और सभी लोग उनको प्रणाम करने लगे और वो हाथ जोड़ करके ऐसे तुम्हारा कल्याण हो सबको कहने लगे। इसके बाद में उन्होंने कहा जनक तुम बतलाते नहीं तो राम श्री रामचंद्र जी आगे आ गए और उनको प्रणाम करके बोले गोसाई ये धनुष को तोड़ने वाला कोई सहज साधारण व्यक्ति है, कोई आपका दास ही होगा, कहिए ये आज्ञा कीजिए आपका आपकी कौन सी सेवा करें, और ठीक से बतलाओ तुम ही है, तुमने इसको धनुष को तोड़ा। इतने में लक्ष्मण जी सामने आ गए और हंस हंस करके बोलने लगे, वो बोले गोसाई लड़कपन में बालकपन में तो हमने कितनी धनुहिया तोड़ दी, किंतु आपने क्रोध नहीं किया और आज एक पुरानी धनुही तोड़ दी तो इससे क्या हो गया, आपको क्रोध करने का कारण क्या है? वो और भड़क उठे, बोले हैं? इसको तू साधारण धनुही समझता है और धनुष और इस धनुष में कोई भेद नहीं देखता, ये हमारे गुरु जी का दिया हुआ ये धनुष है शंकर जी का और इसको साधारण धनुही कर रहा है, हमारे भैया ने क्या समझा? लक्ष्मण जी बोल ये तो समझते थे जैसे ये कोई मजबूत धनुष होगी, नहीं धनुष होगी तो उन्होंने छू दिया ये टूट गया तो इसमें इतना क्रोध की जरूरत क्या है, साधु पुरुष तो क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध तो सब अनर्थों की जड़ है और आप साधु पुरुष हैं, ये कहां से ये महाकपटी धूर्त ये बालक बड़ा निर्भय बोल रहा है, इसको तनिक डर रही नहीं, ये हमको जानता नहीं है जो पृथ्वी को पर मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, विश्वामित्र इसको बरजो और मेरी महिमा बतलाओ। लक्ष्मण जी फिर हंस करके मुस्कुरा करके बोले भला आपकी महिमा, आपकी महिमा दूसरा कौन बोलेगा, आप अपनी जो कर रहे हैं इसे कोई महिमा अधिक नहीं कर सकता है, अपनी महिमा आप ही बतला सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं, दूसरा तो इसको बुरा समझता है, आप ही अपनी बखान कर लीजिए जितना चाहते हैं, ये तो बड़ा भारी दुष्ट है, दुष्ट है, इसको परजो विश्वामित्र। विश्वामित्र जी मन ही मन में मुस्काए और बोले, मन ही मन में सोच रहे हैं, ये ऋषि इतना बोध है कि इसको मालूम नहीं कि ये कौन है ये दोनों भाई, नहीं तो इतना ये सब कुछ नहीं करते, प्रभु इसका कल्याण करे। इतना कह करके वो बोले, जो क्रोध का तो कोई कारण नहीं दिखता, बच्चे बच्चे हैं, बर्रे और बच्चे दोनों एक ही होते हैं। बर्रे जानते हो, पीली पीले वो जो काट देते हैं मुख में चारों तरफ में, बर्रे होते हैं ततैया। हाँ, तो बर्रे और बच्चे दोनों एक ही होते हैं, ये भी बच्चा भी। आप उनके दोषों को क्षमा कर दें, क्या क्षमा कर दे, हमारे तरफ में ये टेढ़ी नजर सभी भी देख रहा है। तो रामचंद्र जी भी उसमें उठ करके आए और बोले, प्रभु हम दोनों आपके दास हैं, ये आपकी महिमा नहीं जानता था, आपको ऋषि के रूप में देखा, कंधे पर जनेऊ देखा, साधुओं जैसी जटा सिर पर देखी, तो आपको साधु समझा, किंतु संदेह हो गया ये साधु तो ऐसे नहीं होते, धनुष बाण और फरसे नहीं लगाते। इसको देख करके इसके मन में कुछ संदेह हो गया, इसलिए छोटा सा बालक जो कुछ बोल दिया इसके लिए हम आपके दास हैं, आप क्षमा। अरे राम, तुम तो बड़ा नम्र दिखता है, किंतु तुम्हारा भाई बड़ा निर्भय और बीस भरा जैसे सोने का घड़ा हो ऐसे तुम हो, ऊपर से पानी देते हो और इसको ऐसे उसकाते हो, तुम दोनों ही एक जैसे हो, अभी मैं तुमको दोनों को मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले, यहाँ तो कोई कुमड़ा और की बतिया नहीं है, कुमड़ा छोटा होता है ना, बच्चा जब लगता है तो उसको देखो ये फल हुआ बस समाप्त हो जाए मर जाएगा, तो यहाँ तो कोई कुमड़ा बतिया नहीं जो बार बार ऐसे ऐसे दिखला रहे हैं, किसको डर दिखला रहे हैं, अच्छा देखो तो फिर ऐसे ही बातें करता है। ये बोले जी, ये हंस करके मुस्कुरा दिए लक्ष्मण जी और उनको उसका रहे कि और क्रोध करे, क्रोध जितना होगा अपनी शक्ति चली जाएगी और विवेचना करने की भी यह शक्ति नहीं रह जाएगी कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा। गीता में कृष्ण ने भगवान ने भी बतलाया, क्रोध समस्त अनर्थों की जड़ है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु सबसे पहले कहता है क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, विचार बुद्धि पूर्वक सब कुछ करो। तो इन्होंने कहा, यदि आप बार बार मुझे उंगली दिखलाते हैं और धमकी देते हैं तो मैं ऐसा समझता कि पृथ्वी में जो कोई भी बी हो और रघुकुल के क्षत्रियों को यदि उसका एक युद्ध के लिए उसको प्ररोचना दे तो वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। आप बार बार ऐसा क्यों दिखलाते, तो लड़ ही लीजिए, जरा फरसा को चला करके तो देख लीजिए, देखें। कहिए देखो इतना डीट है, सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये ऐसी ऐसी बातें बोलता है। रामचंद्र जी फिर बोले, देखिए साधुओं को तो ये सम्मान करता है, किंतु आपको वीर के रूप में देखा फरसा और धनुष बाण, तो इस बच्चे की गलती क्या है, और तो उस पर भी आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस भी ब्रह्मांड में, विश्व ब्रह्मांड में कोई भी हो यदि युद्ध के लिए ललकारता है तो सूर्य वंशी, चाहे वो बराबर का हो या बड़ा हो या छोटा, उसे जरूर लड़ता है। रणभूमि में पीठ नहीं दिख लाएगा, भले ही मर जाएगा मर जाएगा। इसलिए आप धमका रहे हैं, इसलिए वो उस बच्चे ने ऐसा कहा और उसने ठीक कहा, अनुचित क्या कहा, अब ये सुन करके, और उन्होंने कहा यदि लड़ने की बात है तो आप लड़ सकते हैं। परशुराम ने कहा या तो लड़ो, युद्ध करो हमसे, अथवा युद्ध नहीं करते तो ये जो तुम्हारा नाम है राम ये छोड़ दो, नहीं तो मैं ही खंड खंड तुम्हें कर दूंगा। उनका ये नाथ मेरा नाम तो छोटा सा नाम है राम, और आपका नाम है परशुराम, तीन अक्षर बड़ा है, और मुझ में एक गुण है धनुष का, धनुर्धारी हूं, और आप में तो सम दम तितिक्षा इत्यादि जो ब्राह्मणों के गुण है वो नौ गुण या कितने बारह गुण है, सो आप में है हमसे बारह गुणा आप श्रेष्ठ है। फिर भी क्रोध क्यों कर रहे, यदि युद्ध चाहते हैं तो हम क्षत्रिय कुल के हैं, सूर्य कुल में आए हैं, हम लोग युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं। जब इस प्रकार के कहे तो उनको फाजी ऐसा कौन कर सकता है मुझसे युद्ध के लिए, ऐसा तो ब्रह्म ब्रह्मांड में नहीं देखता, ये जितने राजा और सब लोग हैं महाराज जनक से लेकर के महाराज दशरथ और ये सभी लोग डर के मारे थर्रा रहे हैं, और ये दोनों युवक इस प्रकार की निर्भीक होकर के बातें कर रहे हैं, ये कौन है। समाधि में गए और देखा ये तो भगवान रामचंद्र हैं, ये तो भगवान लक्ष्मण जी हैं। बस कुछ शांत चित्त हो गया, हाथ जोड़ कर बोले प्रभु आप कृपा करें, खेचहु चाप मिटहु संदेहु, ये मेरा धनुष है नया, हमारे गुरु का दिया हुआ शंकर जी का, वो तो सचमुच में पुराना हो गया था, इस नए धनुष को इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा जे आप स्वयं भगवान हैं। तो वो धनुष अपने आप राम के हाथ में अपने आप आ गया, लेना नहीं पड़ा, अपने हाथ से चला गया। कहिए ये कैसे चला गया, और देखते देखते एक क्षण भी नहीं लगा कब उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाया और बाण चढ़ाया और उसको खींचा। बोले जी बतलाइए अभी बाण कहां अनुसंधान करो, जहां छोड़ेंगे वहां पर प्रलय मचा देगा, वहां की मिट्टी भी मरुभूमि हो जाएगी, या तो आपके ऊपर में छोड़ू तो आपका प्रणांत कर देगा, और यदि कहिए तो आपके कर्म जो कुछ शुभ किए हैं उनको इस बाण से नष्ट करूं, तो आप फिर चल फिर जैसे कि हवा में चलते थे उड़ते थे और ये आपका जो बल था साधन का वो सब नष्ट हो जाएगा। कंजे प्रभु हमको प्राण से मत मारिए, किंतु हमारे जो कर्म है शुभ जिसके द्वारा आकाश में चलता था वायु में चलता था और हमारी जितनी भी योग सिद्धियां थी आप उसको नष्ट कर दें, हम फिर से इसको अर्जन कर दें। राम ने ऐसा ही किया, धनुष बड़े उठाया, उनके कर्म समस्त अच्छे बुरे सब नष्ट कर दिए, और बाण छोड़ा वो तो थार डेजर्ट में पड़ा। थार डेजर्ट जानते हैं राजस्थान और पाकिस्तान दोनों के बीच में है, वहां बालू ही बालू है, वो बढ़ता हुआ मथुरा तक पहुंच गया था थार, किंतु अब भगवान की विशेष कृपा से राम की विशेष कृपा से हनुमान जी की धर में विशेष कृपा हुई, इसलिए आज यहाँ पर वर्षा होने लग गई, इस वर्ष तो रिकॉर्ड वर्षा हुई, चारों तरफ में हरियाली हो गई, पेड़ पौधे उग गए, चारों तरफ में घास इत्यादि देखी जाती है और फसल खूब हो रही है, फल फूल भी हो रहे हैं, अब राजस्थान का नक्शा ही बदल गया। इस प्रकार से अब परशुराम जी पैदल चल करके मल्याली दक्षिण में जहां रहते थे वहां पर चले गए और भगवान का भजन कर लिया, और इसके बाद में बारात विदा हुई और उनके साथ में श्री रामचंद्र जी अयोध्या को आए। तो भगवान कृपा करके तरह तरह से जीवों पर कृपा करने के लिए आशा करते हैं। ऐसे यदि आश्चर्यजनक घटनाएं न हो तो कोई विश्वास नहीं करेगा जो राम स्वयं भगवान। अयोध्या में आए, सबसे पहले कैकेयी ने सीता जी को बड़े आदर से उतारा और अपने कनक महल में उसको रहने के लिए आदेश दिया। तब से राजकुमार श्री रामचंद्र जी और सीता जी उसी कनक भवन में रहते थे और वो एक साधारण घर में चली गई। जैसे सास अपने लड़के के विवाह के बाद में अपना अच्छा सा घर छोड़ देती है और बहू को उसी में रख देती है, उसी घर में, ठीक ऐसे ही मानो लोक रीति से सब कुछ हो रहा है। कुछ दिनों के बाद में एक समय की बात है, महाराज दशरथ ने एक बड़ी भारी सभा बुलाई। अब बुला करके उसमें उन्होंने प्रस्ताव किया, देखो अब मैं बूढ़ा होने चाह रहा हूं और सारी प्रजाएं राम को राजा के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए सर्वथा योग्य है। मेरी उम्र भी अब ढल चुकी है, इसलिए मुझे तो वनवास जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। अब ये लड़के लोग अपना संभालें, इसलिए मैं आप राजसभा सभा के सदस्यों से महर्षि वशिष्ठ और जितने बड़े भारी संत इत्यादि थे सबसे उन्होंने प्रार्थना की। सबने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग समझते हैं कि अब रामचंद्र जी को युवराज पद दे देना चाहिए। और बाई चांस उस समय में भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए थे मामा के घर। महाराज दशरथ संपूर्ण रूप से भूल चुके थे पहली वाले दो बात, कैकेयी भी पहली वाले दोनों वरदानों की बातें भूल गई थी, इसलिए सब याद नहीं रही। इसलिए रामचंद्र जी के अभिषेक की पूरी तैयारी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा कल ही शुभ दिन है, नौमी तिथि है, उसमें सारी राशियां नक्षत्र और सब ग्रह उपग्रह बड़े शुभ हैं, इसलिए कल ही हो। और जब रात्रि में हम समुद्र से पानी और समस्त जो व्यवस्था जो राजाभिषेक से के लिए होती है वो सारी चीजों की व्यवस्था हम करा लेंगे, कोई चिंता की ना, रात्रि रात में हमारे पास ऐसे दूत सब है और कल ही उनका राज्याभिषेक हो। और आज ये अनाउंस कर घोषणा कर दी जाए कि कल राजा रामचंद्र जी को राज्याभिषेक दिया जाए। ये सब तैयारी हो रही थी, घोषणा हो गई, रात का समय हो आया, शाम हो गई और इधर कुब्जा कैकेयी की मंथरा कैकेयी की दासी कैकेयी के यहां गई और बोली अरे दुर्भागी तुमने कुछ सुना? अरे कल राजा राम को राजकुमार के पद पर अभिषेक करेंगे और तुम चैन की बंसी बजा रही है मूर्खा, कौशल्या राजमाता होगी और तुम राजमाता की दासी होएगी, भरत राजा का सेवक बनेगा, ये पता नहीं है कुछ तुमको? इतना सुनते ही खुशी के मारे कैकेयी ने अपना नौलखा हार उसके गले में दे दी। बहुत खुशखबरी लाई, बहुत मैं खुश हुई, मैं यही चाहती थी कि राम युवराज हूं। वो नागिन की तरफ में फुफकार छोड़ती बोली अरे तुमको ज्ञान नहीं है, कल से तुम्हें सब लोग कौशल्या की दासी कहेंगे, कौशल्या उठलाएगी, राम राजा हो जाएगा, तुमको कौड़ी भर के लिए कोई नहीं पूछेगा न तुम्हारे बेटे। याद है महाराज दशरथ ने तुमको दो वर दिए हैं और तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसे ही कहा था, तुम्हारे घर से जो बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, याद है महाराज दशरथ ने कहा था, तुमने कहा था ये समय पर दो बार मांग लो, अब समय आ गया है आज ही मांगो। इतना कहते ही कैकेयी को याद आया जयराम ने मुझसे ऐसे दो वरदान मांगे थे, भरत का राज्य और इनका वनवास, जैसे देवताओं का कि मनोकामना पूर्ण हो और भगवान की बड़ी करुणामयी लीलाएं हो। अब याद आते ही वो थर्रा गई, कांपने लगी, मुझे क्या करना चाहिए? और इतने में सरस्वती देवी उसके मस्तिष्क में आई और इनको भुला दिया और कहके इन्हें अपने पति से उसी समय में रात में कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ सुन करके आए, उसे मनाने लगे किंतु वो मान नहीं रही। बोले जो तुम अपने बात पर पक्के नहीं, झूठ बोलते हैं, रहो किले रीत सदा चली आई, प्राण जाई बल वचन जाए, झूठ बोलते हो। तुमने वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी दो बर के लिए और बिना मुझसे बर ही मांगे तुमने ऐसा कर दिया। पहला बार मेरा आज मांग रही हूं, तुम हां नहीं नहीं कर रहे। देखो पहला बार यह है, राम को भरत को राजगद्दी दी जाए और दूसरे में 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। 14 ही का क्यों मांगा? इतने दिनों में राम को लोग भूल जाएंगे, दशरथ उनको भरत जी को याद कर लेंगे, इसलिए ऐसा बार मांगा। महाराज दशरथ तो लकड़ी जैसे काट हो गए, सूख कर रोते रोते हार गए। उसको मनाया, उसका पैर पकड़ा, सब कुछ किया, वो मानी नहीं। आज ही रात के समय में राम को खबर दिया, राम आए, कौशल्या को प्रणाम किया और आए उनके पास में। आपकी ये दशा क्यों? बोल ही नहीं पा रहे हैं। तब कैकई ने कहा, मैंने इनसे 2 बार मांगा, सरल सहज रूप में मांगा, इन्होंने कहा थे, प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैंने मांगा। ये नहीं कहा कि तुमने भी ऐसा कहा था। तो मैंने कहा भरत को राजगद्दी हो और राम को 14 वर्ष का बनवास। इस साधारण बात के लिए ही इतनी इनकी दशा, तो ये सत्यवादी कहलाना छोड़ दें। और किस तरह से बाण जैसे चुभने बात कहने लग गई। उस समय रामचंद्र जी ने देखा कि पिताजी तो कुछ कह नहीं गए, समझ गए कि इसमें कुछ गंभीर बातें हैं। पिताजी से इसने वचन मांगा और प्रेम में विवश होकर के जो वचन दिया था कि तुम्हें 2 बार दूंगा, आज उसे विवश हो रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा से टल नहीं सकते। कैकेयी ने भी उनका बहुत हित किया था, सहायता सेवा की थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे। राम तुम वन में नहीं जाएगा, मैं कैकेयी को देश से निकाल करके घर से बाहर कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं कर रहे। उनकी व्यवस्था को राम ने समझा और कैकेयी से बोले जी अभी सवेरे होते ही हम वन के लिए प्रस्थान करेंगे, तुम कोई चिंता मत करो। इसके बाद में राम सवेरे वन गमन के लिए तैयार हुए। कैकेयी ने उनको बलकल वस्त्र दिए, सीता को भी बलकल वस्त्र पहनाने लगी। अनुसुईया जी ने आकर के इसका घोर विरोध किया, तुमने इसके लिए तो वनवास नहीं मांगा, लक्ष्मण जी के लिए वनवास तो नहीं मांगा, तुमने राम के लिए मांगा है, इनको क्यों गेरुआ वस्त्र और जटा जटा पुष्प इत्यादि सब लगाए। किसी प्रकार से सीता जी ने उन वस्त्रों को धारण किया और रामचंद्र जी ने उनके वस्त्रों के ऊपर ही एक गेरुआ वस्त्र एक चढ़ा दिया और अपने जटा जूट बांध करके निकल गए। महाराज दशरथ ने कहा चतुरंगणी सेना इसके साथ में जाए, अयोध्या पुरवाली वासी जाए, जहां रहेगा वहीं रहे। कहके बोली जब तुरंगनी सेना और अर्थ इत्यादि जब राम के साथ भेजेंगे तो भरत राजा क्या मट्टी का होगा यदि कुछ नहीं रहा तो? राम बोले ठीक कहती हैं, यहाँ का हम कुछ ही नहीं लेंगे, हम वनवासी जैसे यहाँ से निकल जाएंगे। प्रतीक्षा किया 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अब आ जाए राम, अब आ जाएगा। उन्होंने सुमंत को आदेश दिया, इनको वन जंगल दिखला करके कल ही लौटा लेना, बस हमारा आदेश भी पूर्ण हो जाएगा। किंतु राम लौटे नहीं, वो भी सत्य प्रतिज्ञा, अंत में हाराम 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 कह करके शरीर को दिया। ये अद्भुत बात हुई, रामचंद्र जी वन में गए। सबसे पहले पड़ाव उनका पड़ा अयोध्या राज्य की सीमा पर, निषाद राज वहां का राजा था, वो देखा जैसे हमारे राज्य पर कोई आक्रमण तो नहीं करने आ रहा, किंतु अपने गुप्तचरों से पता लगा करके, नहीं ये राजा रामचंद्र जी बनने जा रहे हैं। फिर बड़े आवभगत से उनको अपने यहाँ लाया और कहा कि मैं आपको राज्य तिलक करना चाहता हूँ, हमारे राज्य का आप राजा हो। बड़े प्रसन्न हुए। सारी रात लक्ष्मण जी और ये निषाद राज परस्पर कथा में ही लगा दिया। और फिर इसके बाद में हम कथा इसके बाद में ठीक है ठीक है।
बोलो श्यावल राम चंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जहे विधि रखेरा कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहे विधि रखेरा कहीं विधि रहिए। सीताराम सीताराम
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 R
कवि चारण लेखक दो मिनट कुछ अपने कविता सुनाना चाहते हैं तो ये सहर्ष सुना सकते हैं।
ये जो गौर समुदाय है ये राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम के विशेष बल देता है। एक प्राचीन दोहा है हमारे यहां कि राधा तुम बड़ भागिनी तो कौन लोक तारण तरण सोते आदि राधा जी के कृष्ण के प्रति प्रेम का इतना प्रभाव कि वो उनके अधीन रहते हैं तीन लोक के तारण करते हैं। तो ये जो प्रेम है ये जो प्रीत है ये बहुत बड़ी चीज है हमारे इस भूभाग के महान कवियों ने विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां की है प्रेम और प्रीत के बारे में। उनमें से एक ये है कि प्रेम कहने को पर्याय है प्रीत वो तुम्हें मोहब्बत नहीं कहते स्नेह वात्सल्य ममता ये सब प्रेम के रूप है या उनके पर्याय शब्द है। तो कवि कहता है कि धन देते तन राखिए और तन दे रखिए लाज यदि 1 करोड़ रुपए आ रहे हो लेकिन उसमें अपना शरीर जाने का की संभावना हो तो कवि कहता है शरीर को रख और धन को जाने दे चाहे वो कितना ही अगाध है। धन देके धन राखिए और धन दे रखिए लाज धन तन दोनों दीजिए एक प्रीत के काम प्रीत प्रीत कोई महिला ये नायक और नायिका के बीच प्रीत की बात नहीं है ये भक्त और भगवान के बीच की प्रीत भक्तों के आपस के बीच की प्रीत उस प्रेम की बात और ये प्रीत ऐसी है इस प्रकार से बढ़ती है इसका उदाहरण दोहरी में कहा गया है जैसे नदी आती है सूखी नदी गंगा जैसी या सिंधु जैसी नदियां नहीं जो 12 मास चलते रहती है लेकिन जो नदियां बरसात ऋतु में आती है उसकी बात जब वो नदी आती शुरू शुरू में एक छोटा सा नाला फिर धीरे धीरे नदी का पूरा पाट भर जाता है फिर नदी किनारों को तोड़ देती है आसपास के हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं। ये नदी की स्थिति बनती है ऐसे ही जिसका बीज होता है छोटा सा, उसमें से अंकुर फूटता है, अंकुर फूट के पौधा बनता है, पौधे में से धीरे धीरे छोटा सा पेड़ बनता है और वो एक वृक्ष बन जाता है, बट वृक्ष बनता है, अश्वत्थ बन जाता है। कवि कहता है यही बात सच्ची प्रीत में होती है, चाहे वो प्रीत गुरु और शिष्य के बीच की हो, चाहे वो प्रीत भगवान और भक्त के बीच की हो, या किसी इंसान और इंसान के बीच की हो। नदी नीर बड़ अकुरो और उत्तम प्रीत प्रवाह, तो सच्ची कोट का प्रेम होता है, उसकी बात है, दिखावी प्रेम नहीं, हेलो हेलो फ्रेंड वो नहीं, सच्चा प्रेम। नदी नीर बड़ अंकुरो उत्तम प्रीत प्रवाह, ऐ पहले धीमा बहे और आगे बहे अथा, नदी नीर बड़ अंकुरो और उत्तम प्रीत प्रवाह, पहले धीमा बहे आगे बहे रहा। प्रेम को उर्दू में मोहब्बत कहते हैं और मोहब्बत का उल्टा विरोध शब्द है नफरत। तो कवि ने अपने ढंग से कल्पना की है कि प्रेम और घृणा में कौन सी चीज बढ़कर है, कौन सी चीज बड़ी है, नफरत और मोहब्बत में कौन बड़ा है। शायर कहता है जो नफरत बस्तियां बर्बाद करती है भला बनकर, जो नफरत बस्तियां बर्बाद करती है भला बनकर, तो मोहब्बत सूखे खेतों पर बरसती है घटा बनकर। जो नफरत तीर है तलवार है नेजा है खंजर है, मोहब्बत फूल है शबनम है मोती है समंदर है। जो नफरत के कई है महाराज गली देखना करता है, जो नफरत के कई है कंस है रावण की दुनिया है, मोहब्बत राम है सीता है राधा है कन्हैया है। जो नफरत जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है, जो नफरत जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है, मोहब्बत उजड़े घर उजड़े चमन आबाद करती है। जो नफरत माओ की गोद से बच्चे छीन लेती है, तो मोहब्बत दुल्हनों की बांखों से दूध लेती है। जो नफरत भाई से भाई का रिश्ता तोड़ देती है, तो मोहब्बत दुश्मनों को भी दिलों से जोड़ देती है। और मोहब्बत काम जो करती है नफरत कर नहीं सकती, मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज प्रणाम करते हुए
सचमुच में आप बंदी हैं। आज इसी विषय पर मैं बोल रहा हूं। अभी भरत जी का परिचय तो इसीलिए लाया, प्रीति किसको कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ा सो पंडित हो। भैया ये समझो शरीर से ये मोहब्बत नहीं होती। लैला मजनू काम परस्पर नायक नायिका का प्रेम तो नहीं, वो मोहब्बत है।
प्रेम के लिए किसी भी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त कहीं कोई शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है जिसको प्रेम शब्द से व्याख्या है। हमारा प्रेम पहले श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति, इसके बाद में आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव अधिरूढ़ मादनाख्य भाव तक मोहब्बत, इसमें से किसको कहेंगे? बंदी जी भी विचार करें, ये जो बतने हैं प्रेम के जो स्तर बतलाए इसमें से मोहब्बत किसको कहेंगे, लव किसको कहेंगे? डायना और चार्ल्स का भी तो लव था, क्या वो प्रेम था या लव था? वो लव था। प्रेम के विषय में भरत जी को भी पता नहीं, और की तो बात क्या, प्रेम इतना ऊंचा है जो आत्मा से परमात्मा के प्रति होता है और शरीर से शरीर का नहीं। जहां बच्चे के लिए बिलबिलाहट है, जहां पर स्त्री के लिए बिलबिलाहट है, जहां पर देश के लिए बिलबिलाहट है, तो उसको तो आत्मज्ञान ही नहीं। और जब तक आत्मज्ञान नहीं, ये भित्ति प्रस्तुत नहीं होगी, तो शुद्ध प्रेम कदापि नहीं हो सकता है। कोटि कोटि जन्मों में फिर वह राम और भरत का प्रेम नहीं समझेगा, फिर गोपियों का कृष्ण के साथ में प्रेम, ये तो आकाश कुसुम है। इसलिए इस चीज को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं अपने प्रसंग पाता हूं क्योंकि बहुत समय हो गया, आज प्रसंग मेरा समाप्त होगा कि भी नहीं, मैं चाहता था कि भरत की प्रीति की कुछ व्याख्या कर सकूं। प्रेम किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। धन्यवाद है हमारे बंदी जी को जो ये प्रसंग तो अंत तक जैसे भी उठाया, और बड़े सुंदर रूप से उन्होंने अपनी भाषा में अपनी शैली से कला से कलात्मक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। किंतु हाँ, जहां कुछ रहस्य छिपा है वो बिना गुरु के नहीं होता। शंकर और ब्रह्मा जी के समान भी बुद्धिमान हो, बिन गुरु भवनिधि करें, आत्मज्ञान नहीं होता। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे रियलाइज्ड संसार से अनासक्त भगवान की भक्ति और प्रेम की कुछ अनुभूति सचमुच में हो। वो अनुभूति कुछ कुछ वाल्मीकि को हुई, कुछ कुछ सुखदेव गोस्वामी को हुई, भागवत को सुन करके परीक्षित महाराज जी को भी कुछ कुछ प्रीति की अनुभूति हुई, हनुमान जी को भी प्रीति की कुछ अनुभूतियां हैं। तो रामचंद्र जी बनने चले गए और ऋषियों से इधर से पूछ पाछ करके गंगा को पार करके के प्रयाग होते हुए चित्रकूट में पहुंचे, पर्णशाला बनी और उसमें रहने लगे सीता और लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण रात में कभी भी नहीं सोते थे, दिन रात पहरा देते थे राम और सीता की सेवा के लिए, पत्र पुष्प फल मोल इत्यादि की व्यवस्था करते, तीर धनुष लेकर के सब समय सजग रहते। इस प्रकार से रामचंद्र सीता जी भी राम की सेवा करती हुई बड़े सुख से जीवन व्यतीत होने लगे। इधर भरत ननिहाल में गए थे, वहां उपस्थित हुए, वो दूत गया वशिष्ठ जी का, आपको गुरु जी बुला रहे हैं। भरत जी ने सोचा जी पिताजी नहीं बुला रहे, गुरु जी बुला रहे हैं, बात क्या। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं जानता, कल गुरु जी ने बुलाया, बस यही जानता। रास्ते में उनको बहुत से अशुगुन होने लगे, बहुत सी पक्षियों को, गधों को, बंदरों को, हाथी को रोते हुए सुना। और जब अयोध्या पहुंचे तो विधवा नारी जैसी अयोध्या में गए, कोई उनके आगमानी के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, पिताजी रहते तो जरूर आते, भैया होते तो जरूर आते, क्या बात है। आगे बढ़े देखा विधवा वेश में सफेद कपड़े पहने हुए कैकई। कैकई देखते ही बड़ी जोर से प्रेम की आंसू बात हुई और अपने बेटे का आरती उतारने लगी। वर्जी ने पूछा, भैया पिताजी कहाँ हैं? ये सब बातें बतलाऊंगी, तेरे लिए सब कुछ मैंने किया जो कुछ एक माता को करनी चाहिए। पिताजी तुम्हारे गोलोक पधारे, भैया कहाँ हैं? वो तो वन में पधारे। लक्ष्मण लाला कहाँ है? सीता जी कहाँ है? तो वो भी उनके साथ में वन पधारे। क्या बात हुई? क्या बेटे तेरे लिए मैंने राज्य मांगा था। ओ, इसी के लिए? अच्छा, तुमने हमारे सुख के लिए तुमने राज्य मांगा। आज तुम्हारा मैं वध कर देता किंतु राम कभी अप्रसन्न न हो जाए इसलिए वध नहीं कर रहा। कुबड़ी वही पर कुब्जा वहां पर थी, शत्रुघ्न ने 100,000 कुब्जा को मारा और वो तो चिल्लाती हुई भगी और फिर उसका ये पकड़ लिया, भी तुम्हें मारेगा। वरजी ने दया करके छुड़ा दिया, रहने दो ये मर जाएगी फिर राम असंतुष्ट हो जाएगा, स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। और इसके बाद में कौशल्या की गोद में जाकर के रोने लगे। कौशल्या जी ने उनको समझाया, बेटे तेरे प्रति हमारी कोई भी दुर्बुद्धि नहीं। इसके बाद में और जो बातें हुई वहां से चित्रकूट के लिए भरत जी वहां से चले। राज्याभिषेक का सारा सामान लेकर के चतुरंगणी सेना वशिष्ठ इत्यादि जितने भी उनके राजमंत्री गुरु सबको लेकर के चित्रकूट के लिए यात्रा की। और चित्रकूट में पहुंचे, ये भी लंबी कहानी है। और वहां पर पहुंचे भरत राम को पता लगा लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के दौड़े, जी भरत को आज शेष कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज ये उस राज्य से ही संतुष्ट नहीं है, राम को मारना चाहता है। 14 वर्ष का वनवासी इसे नहीं सहन लिया, इसलिए मैं राम लक्ष्मण उसको भरत को आज मार करके खत्म कर दूंगा और उसकी सहायता के लिए जो आएगी सबको ध्वंस कर दूंगा। राम ने कहा कि पछताओगे, भरत का चरित्र तुम नहीं जानते। भरत जैसा आज तक भूतल में कोई भी हमारा सेवक नहीं उत्पन्न हुआ। आज यदि भरत नहीं होता तो पृथ्वी लय हो जाती, ध्वंस हो जाती। मैं भरत को जानता हूं, तुम भले ही नहीं जानते। इसी प्रकार से वो माने भरत जी वहां पर पहुंचे, राम जी के चरणों में पहुंच करके एकदम डकर डकर करके रोने लगे। सुना रामचंद्र जी मैया भी आई हैं, महाराज गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और सब लोग आए हुए हैं। सुन करके फिर भरत को लेकर के माताओं के पास गए, उनके चरणों की वंदना करके उनको भी समीप में ले आए और सबको ठहराने की व्यवस्था की गई। फिर राम ने पिताजी के लिए पिंड दान दिया वहीं पर नदी में और तत्पश्चात सब लोग बैठे। 3-4 दिन हो गया, सभी लोग उपवास रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तब रामचंद्र जी ने कहा गुरु जी से, गुरु जी आप कृपा करके रघुकुल का उद्धार करें, इस समय इसकी नैया डूब रही है। पिताजी के बदले आप पिता और गुरु भी हैं और अमात्य भी हैं, पुरोहित भी हैं सब प्रकार से। ऐसा उपाय कीजिए जो भरत और सारे यहाँ के लोग अयोध्या में लौट जाएं। सुनकर के सभी बड़े व्याकुल हुए। अंत में भरत जी कौशल्या के यहाँ गए, बोले मैया मैं जानता हूं तुम यदि आदेश दे देगी राम को लौटने के लिए तो जरूर लौट जाएगा, तुम्हारी आज्ञा को कभी भी इधर उधर नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। कौशल्या बोली बेटा मैं ये कैसे कह दूं? तो क्या मैया मैं ये धर्म के विरुद्ध बोल रहा था? नहीं, तुम धर्म की बात कर रहे और राम भी तो धर्म की ही बात कहता है, वो भी पिता के आदेश से को पालन करने के लिए बन गया है, मैं उसे कैसे कहती है तुम ये वनवास छोड़ करके चलो अयोध्या में? तो फिर मैं क्या करूं? तुम दोनों ठीक हो, मेरी बुद्धि चकरा गई है, ये मुझको क्या कहना चाहिए, न तो मैं उसको कुछ कर सकती हूं ना। गुरु जी के पास मैं गुरु जी से भी कहा, गुरु जी आपकी बात को वो उल्लंघन नहीं कर सकता इसलिए आप आदेश दे दीजिए। जो वो चले राज्य सिंहासन के लिए हमने सब कुछ प्रस्तुत किया है, उसको राज्याभिषेक करेंगे, यहीं से लौट जाएंगे। वशिष्ठ बोले, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में विवश हूं, तुम्हारा प्रेम आथा समुद्र है, मेरी बुद्धि इस समय भ्रष्ट हो गई है, मैं तुम्हारा पक्षधर हो गया हूं। विचारक होना चाहिए, दोनों तरफ का विचार करके तब कोई राय दे, मैं समय असंभव मेरे लिए, मैं तुम्हारा पक्षधर हो गया हूं, इसलिए कुछ उल्टी बातें निकल सकती है। और राम को भला कैसे कहूं, जब माता पिता की बात को छोड़ करके अब तुम राज्याभिषेक करने के लिए अयोध्या में लौट आओ, तो कोई आप उपाय निकालिए। तो हाँ, उपाय एक है, उपाय ये है, तुम वनवास में जाओ, तुम और शत्रुघ्न, और उसके बदले में राम लक्ष्मण लौट जाए, ये निवेदन करो मुझसे, या कोई विकल्प तुम ही ढूंढ लो, कोई उनके बदले में चला जाए। विकल्प तीन चार हैं, या तो भरत शत्रुघ्न वन में चले जाए, राम लक्ष्मण लौट जाए, अथवा दूसरा विकल्प है राम अकेले सीता जी के साथ में अयोध्या में जाए, और भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी तीनों वन में जाए, अथवा राम से पूछा जाए। इस प्रकार से विकल्पों की बातें हुई, फिर रामचंद्र जी के पास में आए, रामचंद्र जी से कुछ निवेदन किया गया, आप जो हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो, आपकी सेवा और जगत का कल्याण हो, ऐसा काम कीजिए। राम बोले, जब तुम जो चाहो आज कहो, लौटने के लिए लौट जाऊंगा, तुम जो भी कहोगे मैं जरूर दे दूंगा, प्राण भी दे दूंगा। भरत जी सोच रहे हैं, जब मैं क्या कहूं, उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी की भी बात तो रखनी है, राम ने कहा, अब वो विचार करके कहो जो कैसे होगा, तो पिताजी की भी बात ठीक रहे, आप और लक्ष्मण लौट जाएं और हम भरत चले जाएं, और तो हम तीनों भाई वन में चले जाएं और आप वहां रहिए, अथवा चारों भाई हम लोग वहीं पर रहे, कोई भी बात नहीं, जैसा भी विकल्प आप कहेंगे हम मान लेंगे। राम ने कहा, देखो और गंभीरता से विचार करो क्या किया जाए। वशिष्ठ जी से लोगों ने पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा, जी देखो भरत का प्रेम है अथाह समुद्र, पैसिफिक ओशन, जिसका थाह नहीं, और रामचंद्र जी का यह जो सत्यवादिता धर्म है, पिताजी का आदेश पालन करना, वो हिमालय के समान है ऊंचा और स्थिर है, भले ही वो समुद्र में डूब जाएगा, भरत के प्रेम के महासमुद्र में भले ही राम डूब जाएगा, ये बात ठीक है, किंतु अपने धर्म से तसमस नहीं होगा। इतने में सुना जो महाराज जनक आए, सुनकर के बड़ी सबको प्रसन्नता हुई, और बड़े आदर से उनको बुलाया गया, उस दिन सभा विसर्जन होकर के फिर दूसरे दिन बैठी, और वशिष्ठ जी ने उस सभा में सबको बतलाया, देखो आज रायपुर की नैया समुद्र में इधर उधर तरंगों में डूब रही है, कोई खेने वाला नहीं है, महाराज दशरथ परलोक सिधारे, रामचंद्र यहां, भरत जी यहां, मैं वशिष्ठ भी यहां, न जाने क्या होता होगा, इसलिए मैं तो भरत के प्रेम में डूबा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि भरत जो चाहता है वही हो, किंतु महाराज जनक आए हैं, वो विदेह हैं, संसार से मुक्त हैं, कोई उपाय बतलाएं जिससे कि ये नैया बच जाए। सबके अनुरोध करने पर महाराज जनक ने कहा, हमारे ऊपर में बहुत बड़ी भारी भीड़ भार आया, दायित्व आया, इसलिए मुझे विचार करके कुछ कहना होगा। उन्होंने अपने गुरु जी को शंकर जी को प्रणाम करके बोले, देखो मैं जो विचार किया उसके अनुसार में भरत की जीत हुई, भरत जो चाहता है राम को करना चाहिए, कि तुम्हारे ये प्रेम की भी रीति होती है, जो भक्त होता है वो अपने आराध्य देव की भावनाओं को समझ करके उनके अनुसार में काम करे, अपने सुख के लिए न करे। बहुत ही गंभीर तत्व है। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान का मध्यानावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। भक्ति किसको कहते हैं? अपनी सारी अभिलाषाओं को जिसने छोड़ दिया, अपने सुख की लालसा नहीं है और प्रभु के लिए तन मन वचन भावना आत्मा सब प्रकार से उनकी कंटिन्यूस तय धारावत अभिचिन्न गति से उनकी भक्ति की जाए, सेवा की जाए, जो कर्म और ज्ञान के भी अधीन न हो, उसे छिपी हुई न, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। ये साधारण तर से एक साधारण है स्तर, इससे भी बहुत ऊंचा उठ गया है। राधा और कृष्ण की का जो प्रेम है और प्रीति है, वो तो भगवान स्वयं कृष्ण चंद्र भी नहीं समझ सके। मुझको देख करके जगत आनंदित हो जाता है और मेरी आंखें राधा जी को देख करके सुशीतल हो जाती हैं। मेरे बंसी से जगत सब मुग्ध हो जाते हैं और राधा जी के वाणी से मैं मुग्ध हो जाता हूं। मेरे अंगों की गंध से जगत एकदम प्रफुल्लित हो उठता है। मैं राधा जी के गंधों से मैं मतवारा बन जाता हूं। ये गोपियां हमारी गुरु हैं, प्रेम की गुरु गोपियां हैं, हमारी सखा हैं, हमारी सहेलियां हैं, सखियां हैं, माताएं हैं, बंधु हैं, सब कुछ ये गोपियां मेरी है। मैं जिस प्रेम को नहीं समझ सका, जो राधा जी हमको देख करके पागल हो जाती है, दिव्य उन्माद में भर जाती हैं, ज्ञान नहीं रहता जो मैं कहां हूं कौन हूं, ऐसा वो प्रेम है मेरे अंदर में। तो राधिका जी के प्रति वो प्रेम नहीं, इसलिए प्रेम का पाठ यदि सीखना होगा तो फिर राधा जी के चरणों में जाना पड़ेगा, अपने गुरु के पास। यह है प्रेम। भरत जी की आंखें खुली, उसने अब तक मैं सोच रहा था कि मैं प्रसन्न रहूं, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, किंतु राम से तो मैंने पूछा नहीं कभी। जनक ने कहा जे रामचंद्र जी से पूछा जी वो क्या चाहते हैं, तो नहीं तो अपने मन से तुम करे जे राज्य देने से शायद वो खुशी होंगे और मैं भी खुशी होंगे। तुम अपने दुख का भार उतारने के लिए ऐसा सोच रहे हो, जरा राम के तरफ से सोचो। अजय आपने आज आंखें मेरी खोल दी, आप मेरे यथार्थ गुरु हैं। अब तक मैं अपने तरफ से मैं विचार कर रहा था, राम के तरफ से मैंने विचार नहीं किया। उनको क्या करने में दुख होगा या क्या करने में सुख होगा, बस रामचंद्र जी के चरणों में गए और दंडवत प्रणाम किया। प्रभु अब तक मैं भूल में था, भ्रम में था, प्रेम किसे कहते हैं मैं नहीं समझ सका। हाँ, जनक जी ने हमारे गुरु होकर के हमारी आंखें खोल दी। अब आप बतलाइए आप में क्या चाहते हैं, आपकी भावना क्या है। यदि आपको अच्छा है वहां पर चल करके अयोध्या वासियों के समक्ष हम राज्य काज करें आप, अथवा वनवास में क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं, आप बतलाइए की बात करिए आप चाहते क्या है। तो रामचंद्र जी ने कहा देखो तुम्हारी जीत तो महाराज जनक ने और वशिष्ठ सब ने कह दिया, तुम्हारी जीत हुई, तुम्हारे प्रेम में डूब गया। अब दोनों मिलकर के पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो मैं जिस राज्याभिषेक की वस्तुएं लाया है वो ले आओ, मैंने राज्य स्वीकार कर लिया, मेरा राज्य अभिषेक हो गया, अब इसको रख दो यहीं पर। तो वहीं पर भरत कूप है, वहां पर रखा गया और बोले जी देखो मैंने राज्य स्वीकार किया, मैं राजा हो गया, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, अयोध्या में जाकर के 14 वर्ष तक हमारा प्रतिनिधि बन करके हमारा राज्य का चलाओ। उन्होंने कहा कि एक दिन की विलंब हो जाएगी देरी तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, पर जब यह नौबत नहीं आएगी उसके पहले ही आ जाएंगे। और फिर मैया को मैया भरत जी ने लौट करके भी नहीं कहा, रामचंद्र जी का आदेश लेकर के और उनके आदेश से उनकी खड़ाऊं ले ली और खड़ाऊं के ही राज्य पर प्रतिष्ठित करते, उसकी पूजा करते, जो कुछ राज्य का जो कुछ चलता ये पादुका से लेकर के करते। अब उनके अंदर में अभिमान नहीं आया जैसे मैं राजा हूं, वो समझते थे हाँ रामचंद्र ही राजा है, मैं उनका प्रतिनिधि होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ। व्हाट एवर यू डू डू फॉर द बेनिफिट एंड फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण, इष्ट देव के लिए करो, इष्ट देव जिसमें खुशी हो, अपनी खुशी मत देखो। रोते रोते तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। लक्ष्मण जी को देखा ना, सीता जी आओ इसे अग्नि में जलाओ, इसको बाल उसको यहां से सारे जीवन के लिए उसको वन में भेज दिया लक्ष्मण के हाथों। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जब भी छोटा भैया मैं नहीं होता इनके इस आदेश को नहीं, इसलिए अपने इष्ट देव का आदेश पालन करने के लिए कभी कभी अपने इच्छा के विपरीत भी करना पड़ता है, किंतु वही प्रेम है। इन चीजों को विशद रूप में व्याख्या करने की इच्छा थी किंतु समय हो गया, अभी मैं शायद 5-10 मिनट में आगे बढ़ गया, अभी उनकी आरती होगी। आप लोग हनुमान लला की आरती उतारें और इधर में भक्त लोग भी यहाँ पर उनकी आरती उतारें, फिर कल नियम के अनुसार में आप लोग 6 बजे से पहले आ जाएंगे, फिर कुछ कथा आरम्भ करेंगे। गौ प्रणाम,
जय जय श्री राधे।